ते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5 श्लोक संख्या 4। सांख्य योगौ पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम् अपि आस्थितः सम्यक् उभयोः विन्दते फलम्। सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् सांख्ययोगौ पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः एकमप्यास्थितः सम्यक् सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। सांख्य भौतिक जगत का विश्लेषणात्मक अध्ययन, योगो भक्तिपूर्ण कर्म, कर्मयोग पृथक भिन्न बाला अल्पज्ञ प्रवदन्ति कहते हैं न कभी नहीं पंडिता विद्वान जन एकम एक में अपि भी आस्थितः स्थित सम्यक पूर्णतया उभयो दोनों का विन्दते भोग करता है फलम फल। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य का उद्देश्य आत्मा को प्राप्त करना है। भौतिक जगत की आत्मा विष्णु या परमात्मा है। भगवान की भक्ति का अर्थ परमात्मा की सेवा है। एक विधि से वृक्ष की जड़ खोजी जाती है और दूसरी विधि से उसको सींचा जाता है। सांख्य दर्शन का वास्तविक छात्र जगत के मूल अर्थात विष्णु को ढूंढता है और फिर पूर्ण ज्ञान समेत अपने को भगवान की सेवा में लगा देता है। अतः मूलतः इन दोनों में कोई भेद नहीं है क्योंकि दोनों का उद्देश्य विष्णु की प्राप्ति है। जो लोग चरम उद्देश्य को नहीं जानते वे ही कहते हैं कि सांख्य और कर्मयोग एक नहीं है, किंतु जो विद्वान है वह जानता है कि इन दोनों भिन्न विधियों का उद्देश्य एक है। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदाम्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकासस्वामिनिति नामिने नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज के श्लोक में भगवान वर्णन कर रहे हैं कि सांख्य योग और भक्ति योग में कोई अंतर नहीं है, दोनों का लक्ष्य एक ही है। तो ये वाक्य सुन के आप सब सोच रहे होंगे कि ये सांख्य योग क्या है। बहुत कम लोग जानते हैं सांख्य के बारे में। तो सांख्य हिंदी में एक शब्द है, नहीं संख्या। तो संख्या का अर्थ क्या है? गिनती करना, है ना, एक दो तीन। तो संख्या, तो सांख्य जो प्रणाली है तो उसके अंतर्गत क्या है, इस भौतिक जगत का विश्लेषण किया जाता है। हाँ, कि भौतिक जगत कितने तत्वों से बना है और उसका विश्लेषण करके अंत में इस निष्कर्ष पे आया जाता है कि भौतिक तत्व और आत्मा अलग है। तो ये पूरा जो विश्लेषणात्मक जो ज्ञान है सांख्य का, ये श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है इसका वर्णन, जो कि कपिल मुनि जो कि भगवान के अवतार हैं, तो वो इस सांख्य का जो ज्ञान है वो अपनी माता देवहूति को प्रदान करते हैं। तो वहां पे बहुत ही डिटेल में, है ना, बहुत ही डिटेल में वर्णन है सांख्य का। तो भी और वहां पर कपिल मुनि यही सेम निष्कर्ष पे आते हैं कि सांख्य का जो निष्कर्ष है वो है हम भगवान के नित्य दास हैं और हमें अपने आप को समर्पित करना है भगवान के चरणों में। दिव्य जो प्रेम भक्ति है वो हमें करनी है। तो ये एक पुस्तक है, हाँ, देवहूति नंदन भगवान कपिल देव का शिक्षा मृत। तो ये जो तृतीय स्कंद है भागवतम का और उसमें जो कपिल मुनि जो सांख्य का जो ज्ञान दे रहे हैं वो इसमें इस पुस्तक में उसका संकलन किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि सांख्य क्या है, कपिल मुनि जो तृतीय स्कंद में समझा रहे हैं, क्योंकि सांख्य योग अगर हम समझेंगे तभी इस श्लोक को समझ पाएंगे। भगवान जो कह रहे हैं कि सांख्य और जो भक्ति है वो समान है, उसको समझने के लिए सांख्य समझना पड़ेगा, नहीं? तो इसलिए एक क्लास में हम थोड़ा सा समरी समझ सकते हैं, बाकी जिन लोगों को गंभीरता से और अच्छे समझना है तो भागवतम के तृतीय स्कंद को पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि सांख्य क्या है। तो यहां बताया है सांख्य का शाब्दिक अर्थ है गणना करना, जैसा हमने देखा ना, सांख्य मतलब गणना करो। इस नाम के प्रयोग का कारण यह है कि तर्क संगत विश्लेषण के द्वारा यह सांख्य दर्शन ब्रह्मांड विकास संबंधी सिद्धांतों की परिगणना करता है। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज है, सांख्य जो है बहुत ज्यादा बहुत दार्शनिक है, फिलोसफी है बहुत, तो इसलिए साधारण व्यक्ति के लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, फिर भी हम प्रयास करेंगे। तो ब्रह्मांड विकास संबंधी सिद्धांत, तो इस ब्रह्मांड का विकास कैसे हुआ, अर्थात सृष्टि, सृष्टि कैसे होती है, ये जो ब्रह्मांड जो हम देख रहे हैं इसकी सृष्टि कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप है ये पूरा विश्लेषण सांख्य में किया जाता है। कैसे प्रधान महत्त्व जो भी हम देख रहे हैं वो सब प्रधान के अंदर स्थित होता है, फिर प्रधान से धीरे धीरे जो है एक एक करके ये सारे जो हम चीजें देख रहे हैं वो सब प्रकट होती हैं। तो पूरी जो पूरा जो विकास, तो यहाँ इसलिए बताया विकास, तो ऐसा नहीं है कि ये ब्रह्मांड एक विस्फोट से आ गया जैसा कि आधुनिक वैज्ञानिकगण समझते हैं। आधुनिक वैज्ञानिकगण क्या बोलते हैं, बिग बैंग थ्योरी। नहीं, वैसे तो बहुत सारी थ्योरी हैं लेकिन सबसे जो प्रचलित है वो बिग बैंग थ्योरी है, कि ये जो ब्रह्मांड है वो पहले एक बिल्कुल एक बिंदु पे केंद्रित था सब कुछ, ये जो हम देख रहे हैं सब एक बिंदु में था एक। फिर जाने अनजाने ये वैज्ञानिक भी नहीं बता सकते कैसे हुआ, हाँ, कि वो सारा जो ये सारा जो तत्व है वो एक बिंदु में था और फिर एकदम से उसका विस्फोट हुआ। लेकिन किस तरह आपको मान लेना है कि विस्फोट हुआ और फिर अभी जो है ये ब्रह्मांड प्रकट हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ सांख्य में वर्णन आता है कि कैसे एक के बाद एक, एक के बाद एक जो है स्टेप बाय स्टेप क्रिएशन सृष्टि होता है। और इसी में कपिल मुनि ये भी वर्णन करते हैं कैसे जैसे एक शिशु है जो माँ के गर्भ में है तो उसका विकास कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है ना, एक महीने में पर्टिकुलर जो अंग हैं शरीर के वो आते हैं कि करके विकसित होते हैं, ऐसे करके पूरा शरीर 9 महीने में तैयार होता है। तो उसी प्रकार ये ब्रह्मांड भी जो है एक एक करके जो है आता है, इसमें सारी चीजें जो है एक के बाद एक आती है। तो पूरा जो विश्लेषण है वो सांख्य में किया है, तो ये यहाँ वर्णन है ना, ब्रह्मांड विकास संबंधी सिद्धांतों की परिगणना किया, इसलिए परिगणना, तो गणना कितने स्टेप्स में सृष्टि हो रही है ना, पहले ये चीज हो रही है फिर उसका दूसरी ये चीज फिर तीसरी ये चीज, हाँ, ऐसे करके फिर अंत में जैसा हमें सृष्टि दिख रहा है वैसा प्रकट होता है, तो वो गणना करी जाती है। व्युत्पत्ति की, व्युत्पत्ति की दृष्टि से सांख्य का अर्थ है वह जो भौतिक तत्वों के विश्लेषण के माध्यम से अत्यंत स्पष्ट वर्णन करें। दर्शन की दृष्टि से इस शब्द का इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि सांख्य प्रणाली उस विश्लेषणात्मक ज्ञान का प्रतिपादन करती है जिसके द्वारा व्यक्ति जड़ पदार्थ तथा आत्मा के मध्य भेद करने में समर्थ हो जाता है। तो ये है, तो सांख्य का क्या लक्ष्य है, आत्मा और जड़ पदार्थ इसमें भेद कर सके, तो इसलिए ये पूरा जो है पूरा विश्लेषणात्मक पद्धति है, किस लिए, ताकि हर चीज को समझते हुए ये प्रकृति कैसे आई है ना, फिर प्रकृति में फिर हम क्या कर रहे हैं, हम कौन है, जीव क्या है, तो जीव अलग है इस जड़ पदार्थ से, तो प्रकृति ये जो है जड़ पदार्थ की बनी हुई है, तो जड़ पदार्थ और चेतना ये दोनों अलग है लेकिन किसी कारण अभी एक साथ है। जैसे शरीर है तो शरीर में आत्मा है, तो शरीर जड़ पदार्थ है, जो हड्डी मांस ये सब जड़ पदार्थ है, लेकिन जो इसमें आत्मा है जिसके कारण ये शरीर जीवन के लक्षण दिखा रहा है, आत्मा इससे अलग है, तो जड़ पदार्थ और आत्मा अलग है। और मृत्यु इसी को कहते हैं जब ये आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, हाँ, तो क्या होता है, तो फिर जीवन के लक्षण इस जड़ पदार्थ में नहीं दिखते, तो इसलिए
इसलिए जड़ वस्तु क्रियाशील है, क्यों? क्योंकि आत्मा बस संपर्क है।
लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक गण उल्टा सोचते हैं, वो क्या सोचते हैं कि जीवन जड़ पदार्थ से आता है। हाँ नहीं, पहले तो इसलिए जो भी अभी थ्योरी है क्रिएशन की वैज्ञानिकों के पास, तो उसमें सब ये कि पहले कुछ एलिमेंट्स थे, सल्फर था, नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, ये सब थे, और फिर कुछ हुआ, बिजली कड़की या पता नहीं कुछ ऐसे एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आए, उसके कारण फिर जो है लाइफ जीवन पनपने के एक सुटेबल एक अनुकूल वातावरण क्रिएट हुआ, और उससे फिर क्या है सिंगल सेलुलर मतलब एक कोशिका वाले जीव आए, और फिर एक कोशिका जीव से धीरे धीरे बहु कोशिका वाले जीव आए, तो इस तरह से हम लोग आए हैं ना, तो हम बहु कोशिका वाले जीव हैं। पहले एक कोशिका वाले जीव थे, फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ, हाँ उत्क्रांति हुई, तो बीच में बंदर भी आए थे, हाँ, और फिर बंदरों से फिर अल्टीमेटली उत्क्रांति होते होते बंदर मनुष्य बन गए। तो ये जो है आधुनिक विज्ञान से साथ है, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि जो जड़ पदार्थ है वो आत्मा के संपर्क से क्रियाशील होता है, वरना वो क्रियाशील हो गए। तो इसलिए गर्भ में, माँ के गर्भ में जो शरीर विकसित हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आत्मा है वहां पे। अगर आत्मा नहीं होगी तो वो शरीर विकसित नहीं होगा। तो इसलिए जहां पर भी आत्मा है वहां पर जड़ पदार्थ सक्रिय होगा। जैसे कि हम बहुत सिंपल है, ये माइक ये सब कुछ यहाँ रखा है, लेकिन अगर कोई अगर आत्मा का संपर्क नहीं होगा तो ये क्रियाशील नहीं होगा। कोई ऑपरेटर चाहिए नहीं वहाँ, देखो वो जो उधर बटन दबाने के लिए कोई चाहिए तब जाके आवाज़ आएगी, और बोलने वाला कोई चाहिए तब जाके ये कार्य करेगा। तो ये है जड़ वस्तु, लेकिन इसको क्रियाशील बनाने के लिए आत्मा चाहिए। अगर आत्मा नहीं है तो फिर ये कार्य नहीं करेगा। इसको बनाने वाला भी कोई वैज्ञानिक है जो शरीर, उस शरीर में एक आत्मा है जिसने सारे नियमों को समझा और फिर ये उपकरण बनाया। तो अगर हम थोड़ा सा गौर से देखें तो हम इस चीज को समझ सकते हैं कि जड़ पदार्थ आत्मा के संपर्क में कार्य करता है, और जैसे ही आत्मा नहीं है तो जड़ पदार्थ व्यर्थ है। तो इसलिए मृत्यु जैसे ही हो गई, आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, तो शरीर फिर किसी काम का नहीं है ना। इसलिए भागवतों में बार बार ये शिक्षा दी जाती है कि क्यों हम शरीर से इतने आसक्त हैं, जिसका अल्टीमेट जो गंतव्य है, हाँ इस शरीर का क्या है, या तो राख, अगर शरीर को जला दिया जाए तो राख बनेगी, और अगर दफना दिया जाए तो मिट्टी, और अगर कुछ भी नहीं किया तो क्या, कीड़े मकोड़े खाएंगे और उनके मल, है ना। तो ये तीन इस शरीर के गंतव्य हैं, क्या है, राख मिट्टी या मल, और इससे हम आ सकते हैं। तो इसलिए भागवतम हमें शिक्षा देता है कि इस शरीर से, इस क्षणिक शरीर से इतना आसक्त होने की आवश्यकता नहीं, इसका गंतव्य ये है। लेकिन जो आत्मा है इसके अंदर वो महत्वपूर्ण है। तो ये इस निष्कर्ष पर आने के लिए ये सांख्य विश्लेषण आवश्यक है ना, ये विश्लेषण कि हम ये शरीर नहीं है, शरीर से अलग है, जो जीवन जो है वो आत्मा के कारण है, शरीर के कारण नहीं है। तो इसलिए मुख्य क्या है, शरीर है या आत्मा है, आत्मा मुख्य हुई नहीं। अगर हम ये सांख्य विश्लेषण करेंगे तो हम इस निष्कर्ष पर आ सकते कि आत्मा मुख्य है। तो इसलिए फिर हमें कौन से कार्य करने हैं, आत्मा के कार्य करने हैं ना। लेकिन समस्या यही है, हम सोचते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर के लिए कार्य करते रहते। थोड़ा सा अब ये विश्लेषण करिए कि हम 24 घंटे में कितना समय आत्मा के कार्य के लिए दे रहे हैं और कितना शरीर के लिए दे रहे हैं। नहीं, तो 24 घंटे तो पूरे शरीर के लिए दे रहे हैं जो आधुनिक जगत में यहाँ तक लोग हैं, जैसे आप लोग हैं अभी आत्मा का कार्य कर रहे हैं, है ना, श्रवण है भगवान के विषय में श्रवण कर रहे हैं, तो अपना समय दे रहे हैं। लेकिन अधिकतर लोग की तो रुचि नहीं है, वो तो अगर कोई पार्टी होगी तो उसमें जाना पसंद करेंगे जिसमें इंद्रिय भोग, हाँ, जो इंद्रियों के लिए कुछ मजा मिल सकता है, हाँ, उसमें वो समय और शक्ति अपना इन्वेस्ट करना चाहेंगे, लेकिन आत्मा के कार्यों में नहीं। तो कारण क्या है? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं शरीर हूं, उन्होंने ये विश्लेषण अभी तक किया नहीं है कि क्या है ये प्रकृति, क्या है इसमें मैं क्या कर रहा हूं, और ये जो शरीर है क्या है, जीवन क्या है, हाँ, तो ये जो विश्लेषण जो है ये नहीं किया है अभी, क्या हो सकता है करने की। जैसे हम देखते हैं पशु नहीं करता है विश्लेषण, है ना, तो पशु भी ये सोचता है क्या हो सकता है, मुझे बस खाने को मिल जाए सोने को मिल जाए, बस काफी है, और खा के सो के थोड़ी शक्ति आ जाए तो जो है मैथुन सुख मिल जाए, तो पूरा जो भौतिक जगत है वो इसी में चल रहा है। तो कारण क्या है? ये विचारधारा कि मैं ये शरीर हूं। तो इसलिए ये जो सांख्य विश्लेषण है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विश्लेषण के बाद हमें समझते हैं कि हम ये जड़ पदार्थ से अलग है, शरीर से अलग है, आत्मा है, और ये जो प्रकृति है जो जड़ पदार्थ से बनी है तो इसकी भी आत्मा है, मतलब इस ब्रह्मांड की भी आत्मा है, परमात्मा वो विष्णु, वो विष्णु है, इसलिए सब कार्य कर रहा है। अगर विष्णु नहीं होंगे तो ये कोई भी प्रकृति के नियम सब फेल हो जाएंगे, हाँ, कोई भी हर एक अणु, वैज्ञानिक गण बहुत विश्लेषण करते हैं नहीं, एटम जो है और माइक्रोस्कोप से देख के कि एटम के अंदर क्या क्या हो रहा है, हाँ, और अलग अलग थ्योरी क्वांटम फिजिक्स बहुत सारे जो है प्रयास है वो समझने का, लेकिन वो एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि ये सारे नियम चल रहे हैं क्यों, क्योंकि हर अणु में विष्णु का वास है। यह आता है वर्णन, जब भगवान ने इस सृष्टि की रचना करी है ना, इसमें सांख्य में भी आता है, तो सब कुछ ऐसे जड़ था, है ना, कुछ भी क्रियाशील नहीं था, तो क्रियाशील फिर कैसे हुआ जब भगवान उसमें प्रवेश किए, तो विष्णु जो है वो कण कण में उनका वास है, तो इसलिए वो ब्रह्मांड की आत्मा है, इसलिए ब्रह्मांड पूरा कार्य कर रहा है। अगर वो नहीं होंगे तो फिर ब्रह्मांड जो भी हमें दिख रहा है, जो भी विज्ञान के जो नियम है वो सब बंद, वो सब नहीं काम करेंगे, हाँ। तो वैज्ञानिक गण जो है वो सिर्फ ये समझ सकते हैं, मतलब ये देख सकते हैं कि क्या नियम है, प्रकृति के जो नियम है वो बस देख सकते हैं उस पर, लेकिन उनको पूरी वो समझ नहीं है कि उसका कारण क्या है। तो जो सांख्य है, सांख्य से हम कारण समझते हैं इस ब्रह्मांड का, और ब्रह्मांड के जो भी नियम है, जो भी चीजें हो रही हैं इधर, उसका कारण, अल्टीमेट कारण क्या है, तो सर्व कारण कारणम कौन है, गोविंदम, ब्रह्मा जी कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं। तो ब्रह्मा जी अपने पूरे रिसर्च के बाद इस तथ्य पे पहुंचे, हाँ, कि सर्व कारण कारणम जो है वो गोविंद है, कृष्ण है, तो उनके कारण सारी चीज क्रियाशील है, तो अगर वो नहीं होंगे तो फिर कुछ भी, तो इसलिए समझ कि वो मूल है। तो सांख्य पढ़ने के बाद, समझने के बाद व्यक्ति ये समझता है कि विष्णु वो मूल है सृष्टि के, हाँ, हर चीज उनसे आती है, वो स्रोत है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य समझने का। यह ज्ञान परम सत्य की सेवा तथा भक्ति की सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचाता है, अतः यह कहा जा सकता है कि सांख्य और भक्ति एक ही प्रक्रिया के दो सोपान हैं। भक्ति ही अंतिम लक्ष्य है अथवा सांख्य का अंतिम सोपान है। तो ये यहाँ पे ये सेम पॉइंट भगवान कह रहे हैं श्लोक में कि सांख्य और भक्ति जो है वो एक है, दोनों का लक्ष्य एक है। तो क्यों? क्योंकि सांख्य पूरा विश्लेषण करके हम ये समझते हैं हमें शरीर नियम आत्मा है, जड़ पदार्थ से अलग है, और परमात्मा कौन है? विष्णु है। तो आत्मा होने के नाते आत्मा के कार्य क्या है? भगवान की सेवा करना, विष्णु की संतुष्टि के लिए कार्य करना। और वही पूरा जो थीम है वो भगवद गीता में चल रहा है। अभी तृतीय अध्याय से हम देखेंगे भगवान यज्ञ विधि बता रहे हैं। हाँ, तो यज्ञ, यज्ञ मतलब वो कार्य जो विष्णु की संतुष्टि के लिए हो। हाँ, यज्ञो वय विष्णु। तो इसलिए ये मनुष्य जीवन में सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कैसे हमें कार्य करने हैं जिससे भगवान संतुष्ट होते हैं। एक बार मैं एक व्यक्ति से इस विषय पर चर्चा कर रहा था कि हमें ये सेम जो स्टेटमेंट है कि हमें वो कार्य करने जिससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो उन्होंने आर्ग्यू किया कि भगवान तो आएंगे नहीं आपको बताने कि वो क्या चाहते हैं। कई लोग कहे हैं भगवान तो आ नहीं रहे, तो मेरे मन में जो आ रहा है वो मैं कर सकता हूँ, वही भगवान की इच्छा है। आखिर मन क्या है? मन भी भगवान की शक्ति है। तो अगर उसमें अगर कुछ विचार आ रहा है तो मतलब भगवान की इच्छा है। हाँ, तो इसलिए उसको करने में क्या जाता है। तो इसलिए भगवान ने शास्त्र दिए। भगवान अर्जुन को ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? भगवान अर्जुन को ये ज्ञान हमें देने के लिए दे रहे हैं। अर्जुन को आवश्यकता नहीं है, अर्जुन तो भगवान के नित्य पार्षद हैं। तो वो कभी भ्रमित हो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर भगवान की जो लीला शक्ति है उसके प्रभाव में अर्जुन ऐसे मोहित से दिख रहे हैं ताकि अर्जुन को निमित्त बना के हमारे लिए भगवान ये गीतोपदेश दे सके। तो हम सब की स्थिति अर्जुन जैसी है, कंफ्यूज्ड क्या करें क्या नहीं करें। हाँ, चलो जो मन में आ रहा है वही कर लेते हैं। हाँ, तो कोई वो नहीं है कि क्यों करना है, सही क्या है गलत क्या है। वो कोई भेद करने का प्रशिक्षण नहीं है। हाँ, और विचार भी नहीं है। हम देखेंगे आधुनिक जो शिक्षा प्रणाली है तो उसमें कोई ऐसे कोई विषय नहीं जिसमें सिखाया जाए कि क्या सही है क्या गलत है। बस कोई भी चीज करो उससे ज्यादा से ज्यादा धन एकत्रित होना चाहिए तो वो सही है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा धन यश प्राप्त हो तो उसके लिए जो भी करना पड़े वो सब सही है। तो ये जो है पूरी विचारधारा अभी पूरा समाज में फैल गया, एक तरह से फैल रहा है, नहीं फैल गया है। हाँ, और बहुत ही हम देख रहे हैं उसका दुष्परिणाम। तो बिल्कुल जो आधुनिक समाज में और जो आधुनिक पीढ़ी है तो अधिकतर जो है चरित्रहीन है। चरित्र कोई है नहीं, क्योंकि चरित्र की बात तब आती है जब ये भेद करने की समझ हो सही क्या है गलत क्या है। अगर मैं सोचूं मेरे को जो अच्छा लग रहा है वो सही है तो फिर वहाँ पे चरित्र की कोई बात ही नहीं है। क्यों चरित्र अच्छा रखना? हाँ, जीवन का उद्देश्य सिर्फ इंद्रिय भोग है तो क्यों चरित्र की बात करें है? कोई तो इसलिए चरित्रहीन हो रहे हैं लोग। हाँ, तो ये देखते हुए कई विषय इंट्रोड्यूस कर रहे हैं लोग, जैसे इथिक्स एंड वैल्यूज ऐसे सब्जेक्ट जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उससे भी फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि गीता में भागवतम में ये वर्णन है, हाँ, हराव भक्तस्य कुतो महद्गुणः। जो हरि का भक्त नहीं है तो उसमें कभी कोई अच्छा गुण हो ही नहीं सकता। हाँ, बिना भक्त बने हाँ, भक्त बनने का मतलब क्या है कि ये स्वीकार करना कि भगवान परम है और हम भगवान के सेवक हैं और सेवा में लगना, हाँ, तो ये भक्त है। तो जो ऐसे भक्त हैं उनमें सारे देवीय गुण होते हैं, सारे अच्छे गुण सद्गुण स्वाभाविक रूप से आते हैं। लेकिन जो ये नहीं कर रहे तो वो क्या है, उनमें कभी कोई अच्छा गुण नहीं हो सकता। तो इसलिए बताया है दो प्रकार के लोग होते हैं, एक देवीय और एक आसुरी, है ना, हमेशा से ये दो कैटेगरी रही है सृष्टि के प्रारंभ से। तो परिभाषा क्या है, हाँ, देवी कौन है, विष्णु भक्त स्मृतो देवा असुरस्तद विपर्ययः, हाँ, तो ये बताया जो विष्णु भक्त हैं वो देवता गण है, वो देवी है, असुरस्तद विपर्ययः, और असुर कौन है, जो उसके विपरीत, मतलब विष्णु भक्त नहीं है, अभक्त है, हाँ, हाँ, और ऐसा हो सकता है कि वो देवी देवताओं के भक्त हो सकते हैं, यस, पूरी संभावना है, संभावना क्या है, तो पूरा इतिहास में वर्णन है, हाँ, भागवत पुराण में वर्णन है पूरा, जो हिरण्यकश्यपु महान असुर था उसने किसकी आराधना करी, ब्रह्मा की, हाँ, और रावण, रावण ने भी, है ना, शिव जी की, शिव बोल शिव भक्त, बहुत बड़ा शिव भक्त, लेकिन शिव भक्त कैसे बना वो, क्योंकि शिव जी ने उसको दबा दिया अपनी शक्ति से, तो समझ गया वो कि मेरे से बड़े हैं, वरना रावण को जब शक्ति प्राप्त हुई, रावण ने एक्चुअली शुरू में ब्रह्मा जी की तपस्या करी, है ना, रावण ने भी ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने तपस्या करी, ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया और फिर सारी दिशाओं में जा रहा था, सबको ललकार रहा था, हरा रहा था सबको, है ना, विजयी बन रहा था सब पे। तो ऐसे करते करते फिर वो शिवजी को भी उसने आक्रमण किया, सोचा कि मैं इनको भी, इन पे विजय प्राप्त करूँ, तो शिवजी ने उसको हरा दिया, तो वो समझा कि यार ये तो इनसे, तो इनकी तो मुझे पूजा करनी चाहिए ताकि मुझे और शक्ति मिले, हाँ। तो इसलिए देवी देवता की जो पूजा करते हैं, दरअसल अधिकतर वो आसुरिक प्रवृत्ति रहती है, क्योंकि उनको चाहिए रहता है इंद्रिय भोग के लिए, कुछ अपने इंद्रिय भोग के लिए चाहिए रहता है। तो गीता में भगवान कहते हैं कामस्तस्तर्हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तो जो काम वासना से लिप्त हैं और उसके कारण उनका जो ज्ञान है वो जा चुका है, हाँ, काम वासना में व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता, वह अज्ञानी होगा, हाँ, तो क्या होता है वो फिर अन्य देवता, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, वो अन्य जो देवी देवता हैं उनकी उपासना में रुचि दिखाते हैं। तो इसलिए असुर जो है तो उनमें कभी अच्छा गुण नहीं हो सकता, हाँ, ये हमें समझना है। लेकिन आजकल लोग नहीं समझ रहे, लोग सोच रहे हैं कि नहीं, हम विष्णु को तो साइड में कर देंगे, है ना, तो इसलिए ऐसा समाज हम बनाएंगे जिसमें भगवान और आत्मा इसका ज्ञान तो आवश्यक ही नहीं है, है, कोई मतलब नहीं है, और फिर हम जो है अच्छे गुण डालेंगे, है ना, अच्छे गुण विकसित करेंगे लोगों में, संभव नहीं है, क्योंकि वो जो पहला ही जो स्टेप है क्या, कि भगवान को साइड में कर देना, नास्तिकवाद, तो नास्तिकता एक अपने आप में बहुत बड़ा दुर्गुण है, तो इतना बड़ा दुर्गुण लिए हुए कोई सद्गुण कैसे डेवलप कर सकता है, संभव नहीं है, हाँ। तो इसलिए आकलन करिए, विश्लेषण करिए कि अभी समाज में कितने लोग आस्तिक हैं, कितने नास्तिक हैं, नास्तिकों की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, तो उसका अर्थ क्या है कि समाज में हम सद्गुण की अपेक्षा नहीं कर सकते, आप अपेक्षा करिए दुर्गुण के ही, हाँ। तो आप जब बाहर जाएं, अगर आपसे कोई बहुत ही खराब तरीके से व्यवहार करे तो इसमें कोई सरप्राइज नहीं है, है ना, कोई अद्भुत बात नहीं है, आप मान के चलिए तो होने वाला है, क्यों, क्योंकि वो सब असुरिक प्रवृत्ति के लोगों की संख्या बढ़ रही है, ज्यादातर जो है असुरिक प्रवृत्ति के हैं, तो असुर मतलब वो हमेशा खराब तरीके से ही व्यवहार करेगा, तो अभी हम बोलेंगे नहीं, बहुत अच्छे व्यवहार करने वाले भी हैं, बहुत पोलाइट है ना, बहुत ही अच्छे से बात करते हैं, थैंक यू, हाँ थैंक यू वेरी मच, लव यू है, बहुत बोलते हैं हाँ, लेकिन ये सब बोलने के लिए। असुरों का ये एक और गुण है, हाँ बोलने में बड़े माहिर होते हैं, हाँ बोलने में और दिखाने में, दिखावा करने में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन असलियत जो है थोड़ा सा अगर अंदर जाएंगे तो हमें उनका जो दुर्गुण जो सारे वो जो है वो दिखावा है वो समझ में आ जाएगा। वो तथाकथित जो सद्गुण है वो बस अपना काम निकलवाने के लिए, जहां पर उनका काम निकल रहा है वहां पर बहुत अच्छे बन जाएंगे। हाँ तो ये तो इसलिए वो तथाकथित जो जो सद्गुण जो है लगता है हमें कह रहे तो अच्छा है, बहुत ही पोलाइटली बात कर रहे हैं, हैं बहुत ही मीठे वचन बोल रहे हैं, हाँ तो ये जो है वो तब तक जब तक उनका कार्य बन रहा है, लेकिन जब वो उनका कार्य नहीं बन रहा तो उनका फिर असली जो रूप है वो सामने आ जाएगा। जैसे पूतना का उदाहरण है ना, तो पूतना जब आई वृंदावन में भगवान को मारने के उद्देश्य से, तो कैसे आई वो, बहुत ही खूबसूरत रूप धारण करके, सबने सोचा है तो साक्षात लक्ष्मी आई है हमारे कृष्ण को आशीर्वाद देने के लिए, सबने ये सोचा, यशोदा मैया ने मतलब यशोदा मैया ने तक ये सोचा कि तो बहुत ही अच्छा शुभ शुभ अवसर है, हाँ लेकिन फिर जब भगवान ने उसके ऊपर दबाव बनाया, जब हाँ भगवान ने जब उसके प्राण हैं दूध तो लिया ही, दूध पीने के साथ साथ प्राण भी खींचने लगे, तो जब प्राण जब खींचने लगे, जब उस पर दबाव पड़ा, तब उसका असली स्वरूप सामने आया, है ना। तो इसलिए किसी भी व्यक्ति का असली जो व्यवहार है वो जब दबाव पड़ता है तब सामने आता है, हाँ तो ये है। तो आसुरिक प्रवृत्ति जो है वो सामने आती है जब प्रेशर पड़ता है, जब दबाव ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें उसके लिए वो अनुकूल स्थिति नहीं है, है ना। तो हम देखेंगे जो असुर है वो प्रतिकूल स्थिति में उसका असली जो व्यवहार है पूतना जैसा वो प्रकट हो जाता है। और जैसा भगवान गीता में बताते हैं असुरों के लक्षण जो है, हाँ वो हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं, ये एक लक्षण है असुर का। आसुरिक चेतना है जिसकी, आसुरिक प्रवृत्ति है, तो उसका एक लक्षण क्या है, चिंताम अपरिमेयाम, नाना प्रकार की चिंताएं, चिंताओं में वो मग्न रहेगा। हाँ तो आजकल बहुत है ना स्ट्रेस एंग्जाइटी, उसका कारण क्या है, क्योंकि जो आसुरिक चेतना है उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो जितना हम आसुरिक विचारधारा को हम कल्टीवेट करेंगे विकसित करेंगे तो उतना ही फिर उसके जो दुर्गुण है दुष्प्रभाव वो भी आएंगे। तो ये जो मन अशांत होना है ना, मानसिक विकार, ये दरअसल आसुरिक प्रवृत्ति के लक्षण है। जो सत्व गुण में है, हाँ देवीय गुण है, उनको कभी कोई टेंशन नहीं होती, ये सत्व गुण का एक लक्षण है। सत्वगुण मतलब प्रशांत आत्मा, वो हमेशा पीसफुल है ना, शांत रहते हैं। तो इसलिए जो वैदिक संस्कृति है तो वो हमें प्रोत्साहित करती है सत्वगुण में आने के लिए, ना कि रजोगुण और तमोगुण, है ना, ये जो आसुरिक प्रवृत्ति है उसमें जाने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। तो इसलिए अगर हम शास्त्रों के नियम पालन करेंगे तब जाके कोई संभावना है कि हम सुखी हो सकते हैं, है ना। देवीय गुण विकसित कर सकते हैं, और देवीय गुण सद्गुण तब होंगे जब शास्त्रों का हम पालन करेंगे। तो इसलिए वो जो हमसे जो चर्चा कर रहे थे, कह रहे भगवान तो आएंगे नहीं बताने के लिए कि क्या उनको पसंद है क्या नापसंद है, तो भगवान आए हैं यहाँ पे। देखिए भगवान अवतार लेते हैं, अवतार लेते हैं लेने का कारण क्या है, हाँ तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, भगवान बता रहे हैं युगे युगे, हर युग में मैं आता हूं। और मेरा आने का कारण क्या है? पहला कारण है परित्राणाय साधूनां, जो साधु हैं भक्त हैं उनकी रक्षा के लिए। हाँ, विनाशाय च दुष्कृतम्, जो दुष्कृति हैं असुर, हाँ उनका विनाश करने के लिए। और ये दोनों करने से फिर क्या होता है? धर्म संस्थापनार्थ है, धर्म की स्थापना करने के लिए। हाँ, संभवामि युगे युगे, हर युग में मैं आता हूँ। तो भगवान कह रहे हैं साथ मैं आता हूँ। तो ये बोलना कि भगवान तो आएंगे नहीं आपको बताने कि क्या उनको पसंद है क्या ना पसंद है, ये गलत विचार है। भगवान आते हैं और आते हैं अपने वचन छोड़ जाते हैं हमारे लिए, जो उनके उपदेश हैं वो पूरे मनुष्य समाज के मार्गदर्शन के लिए वो छोड़ के जाते हैं। तो इसलिए भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम, तो भगवान की जो वाणी है जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम में रिकॉर्डेड है, हाँ तो वो भगवान से अभिन्न है, ये हमें समझना होगा। मतलब भगवद गीता जब पढ़ रहे हैं तो हम साक्षात श्री कृष्ण का संग कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता हमें, हम हमको लगता है कि नहीं तो अलग है भगवान अलग है, तो ऐसा नहीं। भगवान की वाणी का श्रवण करना और भगवान का संग करना दोनों एक स्तर पे, क्योंकि भगवान परम सत्य है ना। परम सत्य होने के कारण वो क्या है, वो और अपनी शक्तियों से भिन्न और अभिन्न दोनों है। हाँ तो भगवान की वाणी उनकी शक्ति है, लेकिन वो और उनकी शक्ति भिन्न और अभिन्न। तो ये अचिंत्य भेदाभेद तत्व जो है ये हमें समझना है, जो कि सांख्य, सांख्य पूरा पढ़ने के बाद हम इस तथ्य पे आएंगे, अचिंत्य भेदाभेद तत्व कि कैसे भगवान और भगवान की शक्तियां समान हैं और समान नहीं भी हैं। तो उदाहरण कैसे दिया है, समान कैसे है गुण में, जैसे आत्मा है, कई लोग सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक है ना, ये विचारधारा बहुत प्रचलित है खासकर भारत में, कि आत्मा और परमात्मा एक है। तो फिर ये दो शब्द क्यों है? अगर आत्मा और परमात्मा एक है तो वो परम क्यों लगाया वहां पे आत्मा के आगे, तो एक ही शब्द होता ना आत्मा। हाँ तो वहां शब्द तो परिभाषा ही शब्द की परम आत्मा, मतलब वो आत्मा जो परम है सबसे। हाँ और यहाँ गीता में भगवान बताते हैं नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम नेमे जनाधिपा। हाँ ऐसा कोई समय नहीं था जब ये सारे राजा नहीं थे, ये सारे क्षत्रिय नहीं थे, तुम नहीं थे, मैं नहीं था, और ना ऐसा कोई समय होगा। मतलब हम सब हर समय हैं। तो इसका अर्थ क्या है कि ये जितनी भी जीवात्मा है ये सब सनातन है और सब व्यष्टि आत्मा है, हर एक इंडिविजुअल। देखिए हम अगर विश्लेषण करें इस हॉल में अभी जितने भी लोग बैठे हैं, कौन कोई दो व्यक्ति एक जैसा है? समानता है, हम देख सकते समान, सबकी दो आंखें हैं, एक नाक है, एक कान है, दो कान है, एक कान वाला है भाई दो कान है, हो सकता है एक कान से सुन रहा हो, दोनों कान से सुन रहे हैं शायद, नहीं ऐसा नहीं हो एक कान सुन रहे हैं एक कान से निकाल रहे हैं, तो फिर उसके एक ही कान है फिर है? तो दो कान हैं, एक मुंह है, दो हाथ हैं, तो ये समानता है ना, ये दिख रहा है। लेकिन हम देख सकते हैं इसमें भी लेकिन भिन्नता है, किसी की भी आंखें समान नहीं है, सबकी आंखें अलग अलग हैं, सबका चेहरा अलग है, सबका चेहरा है, चेहरे का शेप हम देख सकते हैं एक है, लेकिन सब अलग है। तो क्यों है, कारण क्या है? क्योंकि हर आत्मा अलग है, हर एक आत्मा जो है वो अलग है। हाँ और इसलिए उसका फिर जो उस आत्मा को शरीर में वास है तो वो शरीर भी यूनिक होता है। तो क्योंकि ये अलग है ना, लेकिन समान भी है, समानता भी है और अलग भी है, तो इसलिए तो परमात्मा का अर्थ क्या है, जो परम है, हाँ जो कि सारी आत्माओं के स्रोत है, लेकिन वो हमेशा परम है, वो और आत्मा कभी भी समान नहीं है। समान है किसमें? गुणवत्ता में। तो ये बताया समान कैसे? गुणवत्ता में। तो कैसे? जैसे समुद्र है तो समुद्र का एक बूंद, तो बूंद में अगर आप विश्लेषण करेंगे क्या कितने कितना परसेंटेज सॉल्ट है, कितना परसेंटेज एसिड है, जो भी उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कितना परसेंटेज हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना, वो सब कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज वाइज बूंद में जितना होगा उतना ही सागर में भी उतना परसेंटेज होगा, है ना। क्वालिटी जितना नमकीन समुद्र है उतना ही उसका बूंद भी उतना ही नमकीन है। तो गुणवत्ता में दोनों समान है, लेकिन क्या जो क्या वास्तविक में समान है? वो है बूंद बूंद और सागर सागर है, नहीं? तो उसी प्रकार भगवान विभू है, हाँ, तो परमात्मा विभू और आत्मा जो है वो क्या है? अणु। तो ये डिफरेंस है, तो इसलिए समानता है और भेद भी है, तो इसलिए अचिंत्य भेद आभेद तत्व ये हमें समझना है। तो ये सांख्य योग का अच्छे से उसकी उसको पढ़ेंगे समझेंगे तो इस निष्कर्ष पे हम आएंगे। तो फिर आगे फिर भगवान बता रहे हैं, यत सांख्य प्राप्यते स्थानम तद योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। हाँ, तो भगवान आगे कह रहे हैं, जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथारूप में देखता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है समझने का कि इस जगत में अधिकांश लोग यथारूप नहीं देख पाते चीजों को। हाँ, तो हम देख रहे हैं चीजों को लेकिन यथारूप नहीं देख पा रहे। ऐसे उदाहरण, एक उदाहरण महाभारत से एक उदाहरण हम ले सकते हैं। यक्ष युधिष्ठिर महाराज से पूछते हैं कि इस संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, बोलते ना अद्भुत, अद्भुत क्या है? तो हम लोग बोलेंगे सात अद्भुत वंडर्स हैं, ताजमहल और क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, नहीं, सेवन वंडर्स ऑफ वर्ल्ड है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज उनमें से कुछ नहीं कहते, युधिष्ठिर महाराज दूसरी चीज कहते हैं जो सच में आश्चर्यजनक है, और वो उसको समझेंगे तो हम देखेंगे कैसे लोग देखते हुए भी नहीं देखते। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज क्या कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम् शेषान स्थावरण इच्छन्ति किम आश्चर्य मतपरा। हाँ, तो युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं किम आश्चर्य, तो इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है? क्या अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम्, जो व्यक्ति है हर दिन देख रहा है कि लोग यमालय जा रहे हैं, यमालय जा रहे हैं मतलब मृत्यु, हर दिन देख रहा है वो मृत्यु, शमशान जाएगा भी, अग्नि भी लगा देगा। हाँ, लेकिन वो क्या सोच रहा है, शेषान स्थावरण इच्छन्ति, हाँ, वो सोच रहा है कि मैं तो रहने वाला हूं अनंत काल तक, तो इसलिए प्लानिंग है, कल मैं ये करूंगा, परसों ये करूंगा, तरसों ये करूंगा, और ये करते करते फिर एक बहुत बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा और इस जगत का परम भोक्ता बन जाऊंगा। तो लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि भाई आपकी मृत्यु बिल्कुल निकट है, हाँ, किसी भी क्षण आ सकती है। क्या मृत्यु नोटिस लेके आती है? कुछ कुछ केसेस में, जैसे डॉक्टर अगर बोल दे आपको कैंसर हो गया है तो आ गया नोटिस, हाँ, कैंसर थर्ड स्टेज, तो अभी आपके पास डॉक्टर ही बोल देगा आपके पास 6 महीने हैं, 3 महीने हैं, हाँ, तो उस केस में एक तरह से नोटिस बोल सकते हैं। और वृद्धावस्था, जैसे वृद्ध हुए तो वृद्धावस्था क्या है? मृत्यु का नोटिस है, हाँ, मृत्यु आने वाली है कुछ समय में। और लेकिन एग्जैक्टली कब आएगी मृत्यु ये नोटिस नहीं मिलती है, ये तो अकस्मात। हाँ, और जैसे जैसे मृत्यु होती तो सब सोचते हैं आई वाज शॉक्ड, बहुत धक्का, बहुत धक्का लगा, लेकिन ये तो एक्सपेक्टेड है, आज नहीं तो कल ये होना ही है, तो धक्का लगना मतलब ये मतलब आपने क्या सोचा कि अनंत काल तक रहने वाले हैं हैं? ये असुर की विचार कर रहा है, असुर सोचता है मैं अनंत काल तक रहने वाला हूँ, मेरे को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, असलियत जो है वो क्या है कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, तो ये हम नहीं देखते हैं ना, तो बद्ध जीव जो है देखता ही नहीं इस चीज को, तो कारण क्या है, क्योंकि उसने कभी ये विश्लेषण नहीं किया। हाँ, जो सांख्य का जो विश्लेषण है वो नहीं किया, क्योंकि जो ये विश्लेषण कर सकता है तो वही समझ सकता है। हाँ, तो भगवान ये कह रहे हैं यह पश्यति सपश्यति, तो जो समझता है कि सांख्य और योग एक है, उनका लक्ष्य एक है, जो ये देखता है वो चीजों को यथारूप देख सकता है, तो वो देखेगा तो समझेगा अरे मृत्यु मुझे भी आने वाली है, तो भी क्या करना है, क्या इसका समाधान है, क्यों मुझे नहीं चाहिए, हाँ मृत्यु नहीं चाहिए, हम तो जीवित रहना चाहते हैं अनंत काल तक, इच्छा तो यही है, लेकिन फिर मृत्यु आ रही है, तो ये क्या है, मृत्यु है क्या, हाँ और क्यों हमारे ऊपर ठोकी जा रही है, उसका समाधान क्या है। ये एक जिसमें थोड़ा बहुत सतोगुण है जिस व्यक्ति में, वो ये प्रश्न पूछेगा, हाँ, और फिर प्रयास करेगा इसको समझने का। तो ये मैं उदाहरण दे रहा था कि कैसे ज्यादातर जो लोग हैं इस जगत में चीजें देखते हैं फिर भी नहीं देखते हैं। हाँ, देखो अंधेरा कर देते हैं, मेरे साथ नहीं होने वाला, मैं तो ये बहुत बड़ा आश्चर्य है ना, युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, कि ये समझते हुए कि सब कुछ क्षणिक है फिर भी उस क्षणिक चीजों के लिए ही पूरा समय दे रहे हैं, जो चीजें नष्ट हो जाएंगी पक्का है, आज नहीं तो कल, उसके लिए पूरा शक्ति और समय दिए जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वैसी स्थिति जैसे हम घर बना रहे हैं और हमें पता है घर बना दूंगा, उसके अगले दिन बुलडोजर चल जाएगा उसके ऊपर, क्यों, क्योंकि वो इलीगल तरीके से किया है ना, वो जो जगह है वो इलीगल तरीके से ली है और कंस्ट्रक्शन भी इलीगल तरीके से किया है, तो क्या होगा, जैसे ही मैं बनाऊंगा और उसके बाद सरकार आके उसको बुलडोजर भेज के गिराने वाली है, लेकिन मैं लगे जा रहा हूँ, पूरा मेहनत करे जा रहा हूँ उसको खड़ा करने में, बंगला बनाने में। तो ये तो हम सब क्या है इस जगत में, ये जगत क्या है, ये जेल है, जेल, हाँ, और हम सब इसमें कैदी हैं और हम सोच रहे हैं इलीगल तरीके से, क्या सोच रहे हैं कि ये मेरा है, हैं, मैं और मेरा, और प्रयास कर रहे हैं उसको और विस्तार करने का, मैं और मेरा और अधिक अधिक होता जाए, हाँ, और लेकिन होता क्या है, फिर एक दिन आता है, एक दिन भगवान आते हैं काल के रूप में और बुलडोजर चला देते हैं, और बुलडोजर कहीं भी चल सकता है, जैसे होता है ना अकस्मात चलता है वो, तो इसलिए एक जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो इन चीजों को समझते हुए वो प्रयास नहीं करता इस मैं और मेरे को विस्तार करने का, वो प्रयास करता है उसको कम से कम करके, और अल्टीमेटली हम पूरे कृष्ण भावना भावित हो सके कि ये सब कृष्ण का है, मेरा कुछ भी नहीं, तो सब कुछ कृष्ण का है, तो ये समझते हुए सब कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, कृष्ण की संतुष्टि के लिए। तो अभी मैं कैसे पता चलेगा कृष्ण किस चीज से संतुष्ट होंगे, तो शास्त्र अध्ययन करना होगा, गीता में भगवान बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो मुझे पसंद है और जो मुझे नापसंद है। तो अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, है ना, युद्ध मुझे नहीं करना, हाँ, लेकिन भगवान ने क्या कहा, नहीं ऐसे कह, ये मुझे पसंद नहीं, तुम युद्ध से हट रहे हो, ये मुझे पसंद नहीं, भगवान कह रहे हैं साहब है। तो भगवान ने पूरी गीता बोली अर्जुन को प्रेरित करने के लिए, तुम युद्ध करो, क्यों, क्योंकि तुम युद्ध करोगे वो मुझे पसंद है। तो इसलिए ये है, हाँ, ये एक तथ्य है कि भगवान भी व्यक्ति हैं, तो उनकी भी पसंद नापसंद है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक है, हाँ, तो वो परम व्यक्ति हैं लेकिन परम व्यक्ति हैं। तो परम व्यक्ति का अर्थ क्या है कि वो इतनी सारी शक्तियों के स्वामी हैं जो हम कल्पना नहीं कर सकते। कैसे कल्पना करेंगे, शास्त्रों बताया है कि ये सृष्टि की रचना करनी होती है तो वो खुद नहीं करते, वो विस्तार करते हैं, और फिर जो विष्णु हैं विष्णु जो है सारा देखते हैं जो सृष्टि का, और विष्णु भी खुद सृष्टि नहीं करते, वो भी ब्रह्मा के द्वारा कराते हैं सृष्टि। हाँ, विष्णु को हम देखेंगे तो कैसे योग निद्रा में लेटे हुए हैं, नहीं तो वो ऐसा नहीं है कि उनको अभी जैसे हमें ये मंदिर बनाना था तो इसके लिए हम कितना प्रयास कर रहे हैं, पूरा प्लानिंग कर रहे हैं, आर्किटेक्ट के पास जा रहे हैं और कॉन्ट्रैक्टर के पास है, लेबर से डील करना, मटेरियल लाना, ओ और पूरा एक डेढ़ साल लग गया हमें इतना बनाने में। लेकिन भगवान के लिए ऐसा नहीं है, भगवान को इस ब्रह्मांड की सृष्टि करनी है तो बस उनको बस इच्छा करनी है। हाँ, न कार्यम करणम च विद्यते, हाँ न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, स्वभाव की ज्ञान बलक क्रियाचा, स्वाभाविक उनके लिए स्वाभाविक है ये सृष्टि की रचना करना, कुछ भी करना, हाँ कुछ भी करना, उनको बस इच्छा करनी है और सारी शक्तियां काम करेंगी, वो सब जो उनकी इच्छा है वो हो जाएगा, तो इतने शक्तिशाली हैं। लेकिन अल्टीमेटली वो व्यक्ति हैं, हाँ ये हमें समझना है। और व्यक्ति फिर मतलब क्या है कि उनकी पसंद है नापसंद, इसलिए हम भोग लगाते हैं, नहीं हाँ तो हम अलग अलग व्यंजन भगवान को भोग लगा रहे हैं, क्यों? कुछ पर्टिकुलर व्यंजन है जो भगवान को पसंद है और कुछ है जो नहीं पसंद है, जो नहीं पसंद है वो नहीं लगा सकते, तो जो मांसाहार है वो नहीं पसंद है भगवान को, इसलिए नहीं लगा सकते, उनको भोग नहीं लगा सकते। हाँ, लहसुन प्याज है नहीं पसंद है, चाय कॉफी नहीं पसंद है भगवान को, भगवान को क्या पसंद है? दूध, तो दूध पसंद है, मक्खन माखन पसंद है, हाँ तो वो भोग लगाते हैं, क्यों? क्योंकि भगवान को पसंद है, तो इसलिए भगवान में वो चीज है पसंद ना पसंद, ऐसा नहीं है कि सब एक है, कुछ भी करो सब दिव्य है। हाँ, तो इसलिए हमें समझना होगा कि भगवान को क्या पसंद है, हाँ क्या चीज भगवान को संतुष्ट करती है, तो वो हमें करना है। तो अभी भगवान की संतुष्टि को समझने के लिए हमें, हमारे लिए क्या है? गुरु साधु शास्त्र। तो गुरु हैं जो कि शास्त्रों की शिक्षाओं को पूरा जीवंत है ना, पूरा जी रहे हैं इसको, तो एक तरह से हम बोल सकते हैं गुरु कौन है? जो जीवंत शास्त्र है। हाँ, तो इसलिए गुरु शास्त्र और साधु, साधु जो उन सारी शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, तो ये तीनों चीजें हैं हमारे मार्गदर्शन के लिए, समझने के लिए कि मैं अगर ये कार्य कर रहा हूं तो ये भगवान की संतुष्टि के लिए या नहीं है। हाँ, तो इसमें देखेंगे मनुष्य समाज में हर चीज को करने की एक विधि है, और वो विधि क्यों है? वो पर्टिकुलर विधि क्योंकि वो भगवान के अनुसार है, अगर वो भगवान के अनुसार नहीं है तो क्या है वो? अविधि, अविधि पूर्वकम। और ये असुर का गुण है, असुर जो है कभी भी शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करेगा, हाँ वो शास्त्रों के विपरीत ही जाएगा, और अभी बहुत उसका प्रचलन है। तो इसलिए शास्त्रों में अगर स्त्री पुरुष संग करना चाहते हैं तो उसका फिर एक विधि दिया है, क्या विधि है? विवाह यज्ञ। तो विवाह यज्ञ है, उसके अंदर जो है गृहस्थ जीवन में, फिर उसके गृहस्थ जीवन के फिर नियम है बहुत सारे, कर्तव्य बताए हैं वो सब, उसका पालन करना है। हाँ, लेकिन आजकल क्या है, कोई आवश्यकता नहीं है विवाह की। हाँ, आजकल लिविंग रिलेशनशिप और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, नहीं तो ये क्या है? असुर प्रवृत्ति। तो असुर जो है वो कभी भी शास्त्र के अनुसार क्या जरूरत है विवाह करने की, और हम देखेंगे शास्त्रों के अनुसार विवाह नहीं होता है। हाँ, वो जो क्योंकि शास्त्र जो है, जो विवाह यज्ञ है, तो यज्ञ का अर्थ क्या है? वहां भगवान है ना, यज्ञ, यज्ञो वै विष्णु। हाँ, तो इसलिए वहां विवाह के समय जो है यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ क्या है? दरअसल ये समझते हुए कि हम स्त्री और पुरुष एक साथ आ रहे हैं, क्यों? भगवान विष्णु तक पहुंचने के लिए। हाँ, ऐसे नहीं आपसी इंद्रिय भोग के लिए बस आ रहे हैं एक साथ, लेकिन अभी क्या विचारधारा है कि आपसी इंद्रिय भोग के लिए आ रहे हैं एक साथ, भगवान को प्राप्त करना है वो तो कोई समझ है ही नहीं। तो इसलिए अविधि, तो इसलिए फिर वो क्या आवश्यकता है? अगर इंद्रिय भोग ही उद्देश्य है तो इसलिए कोर्ट में भी कर लेंगे। हाँ, कोर्ट में भी कर लेंगे शादी, क्या दिक्कत है उसमें? और जैसे कोर्ट में शादी करी वैसे डाइवोर्स भी कर लेंगे। हाँ, लेकिन वैदिक संस्कृति में डाइवोर्स का कंसेप्ट नहीं है, संस्कृत में शब्द नहीं है डाइवोर्स के लिए, क्योंकि वो कंसेप्ट ही नहीं है। हाँ, वो विचार ही नहीं है, संभव ही नहीं है शास्त्रों के अनुसार। तो तो इसलिए शास्त्र अनुमोदित हमें जो है विधि से कार्य करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि वो भगवान को प्रिय है, भगवान की ओर हम बढ़ रहे हैं, और नहीं तो फिर भगवान से हमें दूर ले जा रहा है। तो शास्त्रों में बहुत सारे डिटेल, बहुत डिटेल में वर्णन है कि कैसे मनुष्य को जीना है, कैसी हमारी वेशभूषा होनी चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, पूरा जीवनचर्या, सदाचार, सदाचार का भाग आता है ये जो वैदिक संस्कृति है उसमें, कैसे जी जो दिन है कैसे प्रारंभ होना चाहिए, और प्रारंभ से ले दिन प्रारंभ होने से लेके अंत तक है ना, सूर्यास्त तक कैसा समय है, कैसे क्रियाओं को करना है, वो पूरा जो है वर्णन है। तो श्रुति और स्मृति है ना, इन चीजों का वर्णन करते हैं, बहुत डिटेल में निर्देशन है कि कैसे हमें जीवन जीना है, लेकिन आजकल उसका पालन नहीं हो रहा है और इसका हम फिर परिणाम देख सकते हैं कि सब आसुरिक प्रवृत्ति में लिप्त है। फिर आगे फिर भगवान बता रहे हैं, संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तमयोगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नचिरेणाधि गच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हाँ, तो भी ये है, तो सिर्फ सांख्य विश्लेषण करना काफी नहीं है, यहां भगवान बता रहे विश्लेषण किया, अभी समझ, ये समझ लिया बुद्धि से कि आत्मा और जड़ पदार्थ अलग है और फिर अल्टीमेटली भगवान जो है इस सबके कारण है, सबके स्रोत है, तो फिर उसके बाद ये समझने के बाद भक्ति में लगना है, अगर भक्ति में नहीं लगेंगे तो फिर उससे जो है हमें सिद्धि नहीं मिलेगी।
तो भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता।
इसलिए संन्यास, संन्यास कभी कभी लोग सोचते हैं ना कि सब कुछ छोड़ देना है ना, सारे कार्य भी छोड़ देना, तो सारे कार्य छोड़ना जो है यहाँ पे भगवान उसकी उस विषय में नहीं कह रहे हैं ना, भगवान कह रहे हैं कि समस्त कर्मों का परित्याग करने से कुछ नहीं होगा, भक्ति के कर्मों, भक्ति की क्रियाओं में लगना होगा। तो भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है, तो ऐसा, तो जो भक्ति की क्रियाओं में लगा है तो शीघ्र वो जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे, तो ये हमने आज छठे श्लोक तक हमने देखा, तो आगे हम सातवें श्लोक पर फिर चर्चा करेंगे अगले रविवार को, तो मैं समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न या टिप्पणी? हाँ,
आपने कहा कि जड़ पदार्थ है वो आत्मा के बिना क्रियाशील नहीं हो सकता, लेकिन एक पत्थर है, पत्थर को छेनिया तोड़ा मार के उसका विग्रह बनाया जाता है, और उसका फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, और उसमें क्या है कि उसमें फिर वो क्रियाशील हो जाता है, जैसे मंदिरों की मूर्ति है, जैसे तिरुपति बालाजी है, जगन्नाथ धाम है, तो वो जड़ पदार्थ जो क्रियाशील हो गया वो किस वजह से हो गया, तब क्या कि
नहीं, ये जो आप ये जो केस ले रहे हो ये तो स्पेशल केस है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, हाँ, भगवान की आराधना करते हैं शास्त्रों के अनुसार, तो अभी वो वहाँ पर जो मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा किया है, हाँ, तो उसके कारण वो जीवंत है और फिर उसकी हम शास्त्रों के अनुसार, शास्त्र अनुमोदित आराधना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये कंसेप्ट समझा रहा था कि जो विचारधारा है कि लाइफ कम्स फ्रॉम मैटर, वो गलत है। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ है ना, जीवन जीवन से आता है, ऐसा नहीं जीवन जड़ पदार्थ से आता है, ये पॉइंट है। और फिर जहां पर भी जड़ पदार्थ कार्य कर रहा है तो वहां पर आत्मा चाहिए, आत्मा अगर नहीं होगी तो जड़ पदार्थ कार्य नहीं करेगा, ये है ना। जैसे उदाहरण दिया ना आपको, माइक का उदाहरण दिया, कोई भी लीजिए, कार ले लीजिए, है? तो कार है, सब कुछ है, हाँ, लेकिन जब तक ड्राइवर नहीं होता तो नहीं चलेगी वो, तो आत्मा चाहिए उसको क्रियाशील करने के लिए। हाँ, मूर्ति मतलब ये देखिए उसमें ऐसा ऐसा नहीं कह सकते आप कि उसमें अल्टीमेटली भगवान का प्रवेश हर भगवान का वास हर कण कण में है। हाँ, लेकिन जो मूर्ति पूजा है, जो अर्च विग्रह है, तो उसके लिए शास्त्रों में कुछ विधान है कि हम अर्च विग्रह बनाने की एक विधि है, उसके लिए कुछ एक आठ धातुएं बताई गई, आठ धातुओं से ही आप बना सकते हो, उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा करनी है ना, और फिर आराधना प्रारंभ करनी है। तो वो किस लिए है? हाँ, ताकि भगवान की आराधना जो है एक शास्त्रों में जो दिया है उसके अनुसार एक प्रक्रिया से चालू करने के लिए, ठीक है।
तो उस विग्रह में शक्ति आ जाती
है। हाँ यस, और जो आठ प्रकार के बताए हैं तो उसमें फोटो जो है वो भी है, तो ऐसा नहीं है कि अभी ऐसे हमारे पास फोटो है तो भगवान नहीं है, भगवान है यहाँ पर भी है, ऐसा नहीं सिर्फ मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हुई तभी भगवान है। जैसे यहाँ वर्णन आता है कि नारद मुनि पूछते हैं भगवान से कि आपका वास कहाँ पर है, तो भगवान क्या कहते हैं, ना हम तिष्ठामि वैकुंठे ना योगी नाम हृदयेषु वा, यत्र गायन्ति मद्भक्ता तत्र तिष्ठामि नारद। हाँ, तो भगवान क्या बता रहे हैं कि ना तो मैं वैकुंठ में हूँ और ना ही योगियों के हृदय में, जो कि हम सोचते हैं है ना ऐसे है, लेकिन भगवान यहाँ स्ट्रेस कर रहे हैं पॉइंट क्या कि इन दोनों जगहों पर मैं नहीं हूँ, मैं कहाँ पर हूँ, यत्र गायन्ति मद्भक्ता, जहाँ पे मेरे भक्त नित्य मेरा गायन कर रहे हैं, मेरा गुणगान कर रहे हैं, तत्र तिष्ठामि नारद, वहां पर मैं वास कर रहा हूँ। तो इसलिए जहां पर नित्य भगवान के नाम का कीर्तन हो रहा है तो वहां पर भगवान का साक्षात वास है, और फिर वो है वो प्राण प्रतिष्ठा और वो सब एक विधि है शास्त्रों में दी है। तो वहां ये बताया है अगर हम अर्च विग्रह की पूजा कर रहे हैं तो फिर अर्च विग्रह के लिए वो सारे नियम हैं, हाँ वो पालन करने हैं, वरना वो अविधि पूर्वक हो जाएगा और फिर उसका फिर हमें फिर गलत है ना दुष्प्रभाव हमारे ऊपर होंगे। तो इसलिए हम अगर अर्च विग्रह की आराधना कर रहे हैं तो वो सारे नियम पालन करने होंगे, हाँ, और अगर हमें लग रहा है कि हम वो नियम पालन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए फिर भगवान की जो फोटो है उसको रख के हम रेगुलर कीर्तन करें, हाँ, जो हम इतना पालन कर सकते हैं। तो इसलिए भगवान का वास वहाँ पर भी है जहाँ पर नित्य कीर्तन हो रहा है, ऐसा नहीं सिर्फ जहाँ अर्च विग्रह है वहीं पर भगवान है। चौसठ कलाओं में देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो चौसठ कलाएं जो हैं वो भौतिक कलाएं हैं, उसमें जो उसमें कृष्णा बुक में वर्णन है ना भागवतम के दशम स्कंध में आता है भगवान सांदीपानी मुनि के आश्रम में, तो चौसठ कलाएं जो सीखते हैं तो उसमें ज़्यादातर जो है वो भौतिक कलाएं हैं, जैसे अलग अलग विषय जो हैं भौतिक विषय। तो सांख्य जो है तो प्योर जो है आध्यात्मिक विषय है, तो देख सकते हैं एक बार आप उसमें भागवतम में चौसठ कलाओं में एक बार देख लिए, उसमें अगर सांख्य हो गया तो है, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा उसमें है या नहीं, तो इसलिए मैं ऐसे कह नहीं सकता कि उसके अंदर है या नहीं देखना पड़ेगा मुझे भी। हाँ वेदांत सूत्र में ये पूरा वर्णन है ना, वेदांत सूत्र जो है उसमें बहुत डिटेल में वर्णन है सारा। तो वेदांत सूत्र जानते हैं देखिए, ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद ये तो चार वेद हैं, उसके बाद फिर 108 उपनिषद हैं, फिर 18 पुराण हैं। तो वेद व्यास जी ने सब लिखा, इन सबको लिखा, और उसके बाद उन्होंने वेदांत सूत्र लिखा। वेदांत मतलब ये सब पढ़ने के बाद जो निष्कर्ष है, अंत, वेदों का अंत, तो वो उन्होंने सूत्र के रूप में लिखा है। तो वेदांत सूत्र में ये सारा जो है विश्लेषण है। और चार वेदों में भी, चार वेदों में क्या है, देखो जो 99% है वो कर्मकांड है, समझ लो। कर्मकांड मतलब ये करना है ना, ये कर लो तो ये मिल जाएगा, ये करोगे तो स्वर्ग प्राप्ति होगी, तो स्वर्ग में फिर जो है ना इंद्र, अगर इंद्र बनना है तो उसके लिए ये अश्वमेध यज्ञ करना होगा, ब्रह्मा बनना है तो 100 वर्षों तक वर्णाश्रम के नियमों का पालन करेंगे तो ब्रह्मा का पद प्राप्त होता है। तो ऐसे करके उसमें विधि विधान है कि आप ये करो, आपको क्या चाहिए, आपको इंद्रिय भोग के जो भी अवसर चाहिए तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो वो जो है वेदों में अधिकतर वो है। इसलिए भगवान कहते हैं ना, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवा अर्जुन। हाँ, तो जो वेद हैं, वेदों में भी क्या है, तीन गुणों के बारे में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों के बारे में ही है अधिकतर ज्ञान। लेकिन भगवान अर्जुन क्या कह रहे हैं, निस्त्रय गुण्य भव अर्जुन, लेकिन तुम्हें गुणातीत है ना, तीनों गुणों से ऊपर जाना है, तो तीनों गुणों से ऊपर जाना है तो उसके लिए जो है ये सांख्य और भक्ति योग जो है वो चाहिए। तो इसलिए ये जो सांख्य जो मेन जो है ना, वो उपनिषदों में, उपनिषद में और वेदांत सूत्र में इसका अधिक वर्णन है, और फिर भागवत में, तो भागवत पुराण जो कि वेदांत सूत्र पे भाष्य है वेदव्यास जी के द्वारा ही, तो उसके तृतीय स्कंद में कपिल मुनि पूरा वर्णन कर रहे हैं सांख्य योग का विषय में। हाँ, अच्छा, इसमें फिर एक और पॉइंट बताना भूल गया, इसमें एक एक्चुअली दो प्रकार के सांख्य हैं, है ना, तो एक तो है आस्तिक जो कपिल मुनि ने जो दिया जो कि ओरिजिनल सांख्य है, फिर दूसरा है नास्तिक सांख्य जो कपिल मुनि के बाद एक और कपिल आए थे नास्तिक, जिन्होंने नास्तिकतावाद का प्रचार किया। तो उसमें क्या है, वो पूरा प्रकृति का विश्लेषण है, लेकिन निष्कर्ष क्या है कि सब कुछ जड़ पदार्थ ही है, आत्मा नहीं है, जीवन भी जो है वो जड़ पदार्थ से आ रहा है। तो वो जो है वो नास्तिक सांख्य है, जिसको ज्यादातर आजकल विद्यालयों में जो जो भी पढ़ते हैं सांख्य के नाम से वो पढ़ते हैं, नास्तिक सांख्य पढ़ते हैं। लेकिन जो एक्चुअल जो सांख्य के जो प्रवक्ता हैं वो कपिल मुनि, कपिल मुनि जो देवहूति के पुत्र हैं, इसलिए इसमें इस पुस्तक में टाइटल जो है ना वो इसलिए दिया है, देवहूति नंदन कपिल मुनि। अगर सिर्फ कपिल मुनि लिखेंगे ना तो लोग सोचेंगे अच्छा वो वाले कपिल जिन्होंने नास्तिक जो सांख्य है उसका प्रचार किया। हाँ, क्योंकि नास्तिक, नास्तिक लोगों के बीच में जो नास्तिकतावाद का प्रचार करेगा वो फेमस होगा नहीं। हाँ, तो ये भी एक समझिएगा ना, तो वो जो नास्तिक सांख्य है वो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, वो जो आस्तिक सांख्य है वो वेदांत सूत्र और श्रीमद भागवतम जो वेदांत सूत्र का भाष्य है तो उसमें प्रतिपादित है। माइक रखे हैं उन्होंने,
जो अश्वमेध का जो बड़ा दास था वो जिसके नाम था सागर, जो गंगा जी की भाई, और उनको उनका आश्रम इन्होंने बोला था वही का।
हाँ, वही है, तो उन्होंने अश्व को नहीं लिया था, वो तो अश्व वहाँ पहुँच गया था, वो देखना पड़े, वो नवे स्कंद में आती है वो लीला। हाँ, वही कपिल मुनि। यस, और कोई प्रश्न? हाँ प्रभु जी, माइक पर चलिए। हरे कृष्ण। संख्या बढ़ रही है शुरू में। क्या क्वेश्चन क्या है?
डिजाइनिंग पर नेचर है कि प्रकृति में ऐसा होना है, इसलिए हो रहा है, और दूसरे ये अंत क्या थोड़ा सा प्रकाश।
हाँ हाँ, मतलब नेचर देखिए, अल्टीमेटली जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, सब भगवान की संतान हैं, है ना। अब संतानों में क्या होता है, एक होते हैं जो ओबीडियंट होते हैं, आज्ञाकारी है, और एक है जो अनाज्ञाकारी है। तो भी एक संतान आज्ञाकारी क्यों होता है, एक संतान अनाज्ञाकारी है, उसकी इच्छा है ना, वो ऐसी इच्छा कर रहा है कि वो पिता के आदेश पालन नहीं करना चाहता, और एक है जो पिता के आदेश पालन करना चाहता है। तो इसलिए जो असुर है देवता है, दोनों भगवान की संतान है, लेकिन असुर कौन है? जो भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, भगवान का जो उपदेश है आदेश है उसको स्वीकार नहीं करते, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। और देवता कौन है? जो भगवान के आदेश को स्वीकार करते हैं, भगवान की सत्ता की है, भगवान परम है और हम उन पर निर्भर हैं। तो ये दो गुण जो है वो सृष्टि के प्रारंभ से हमेशा हुए हैं, है ना। तो दिति के पुत्र जो हैं वो सब दैत्य है ना, और अदिति के पुत्र जो हैं वो सब देवी है ना, देवता। तो ये गुण हमेशा, तो प्रकृति, ये प्रकृति है ना, नेचर है ये, हाँ मेटेरियल नेचर का ये एक भौतिक प्रकृति के का स्वभाव है। और फिर इसका अंत जो है वो तो एक चीज है कि ये देव और असुर जो है उनके बीच में हमेशा संग्राम चलता रहता है, हाँ वो युद्ध चलता ही रहता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। हाँ तो देवता जो है वो असुर के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और असुर जो है वो कभी उनके ऐसे जीवन नहीं जिएंगे, ठीक है। तो क्या दोनों में हमेशा क्लैश है ना, भिड़ंत होती रहेगी हर चीज में। तो इसलिए ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना करी तो उन्होंने असुरों को एक जगह दिया रहने के लिए, हाँ, और देवताओं को एक जगह, ताकि वो क्लैश नहीं हो। लेकिन होता है कि देवतागण जो है वो कभी भी जाके परेशान नहीं करते असुरों को ऐसे, है ना। लेकिन असुर जो है वो उनकी प्रवृत्ति होती है लोगों को परेशान करने की। तो इसलिए हम देखेंगे असुर जब भी तपस्या करेगा तो सबसे पहले इंद्र पे धाव बोलेगा। इंद्र कभी खुद से आके कभी असुर पे हमला नहीं करते, कभी हम शास्त्रों में ऐसा वर्णन देखेंगे कि देवता इंद्र बोल चलो असुरों को मारते हैं भी। वो ठीक है, अपना जो एक जगह दिया है वहां पे हैं देवतागण, और असुर अपनी जगह पे हैं। लेकिन असुर जब शक्तिशाली हो जाते हैं तो वो तुरंत जो है सबको परेशान करना चाहते हैं। क्षयाय जगतो अहिताय, हाँ भगवान गीता में बताते हैं असुर का क्या लक्षण है, कि वो सबको पीड़ा देने के लिए कार्य करता है, जगत के अहित के लिए कार्य करता है। उसको जैसे ही शक्ति मिलेगी सबके अहित के लिए वो कार्य करना प्रारंभ कर देगा। तो ऐसा जब होता है तो फिर उस समय भगवान प्रकट होते हैं या अपने एक शक्तिशाली प्रतिनिधि को भेजते हैं असुरों का प्रभाव जो है उसको कम करने के लिए। तो इस तरह से सृष्टि होती है और ये जो है संग्राम चलता रहता है, हाँ, और अल्टीमेटली प्रलय होगी तो वो तो सब कुछ नष्ट होना है ना। सृष्टि और प्रलय के बीच में ये कहानी है ना, ये जो है ये स्थिति चलती रहती है। तो इसलिए फिर हमारे पास एक ऑप्शन है कि क्या हम असुर के ग्रुप में जाएं या देवी ग्रुप में, हाँ। तो अगर असुर के ग्रुप में जाएंगे तो क्या होगा, हम हमेशा असंतोष में रहेंगे। असुर जो है कभी सुखी नहीं होते, वो इंद्रिय भोग का जो जीवन है, जैसे शास्त्र में वर्णन आता है हिरण्यकश्यप रावण ये लोग बहुत बड़े इंद्रिय भोगी थे, लेकिन वो कभी भी संतुष्ट नहीं थे, परेशान थे हमेशा एक्चुअली, हाँ। और अगर हम तो ये परिणाम होगा अगर हम आसुरिक ग्रुप अगर ज्वाइन करेंगे। अगर देवी ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, तो हम संतोष में है ना, सत्वगुण प्रदान होगा, और उससे फिर धीरे धीरे ऐसी स्थिति क्रिएट होगी कि ज्यादा जो है वो देवीय गुण, जो देवीय गुण वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ेगी, और जब उनकी संख्या बढ़ेगी उनमें शक्ति होगी तो फिर असुर जो है उनका प्रभाव कम रहेगा। अभी समस्या क्या है, जो देवीय गुण भी हैं तो वो भी असुरों से प्रभावित हो रहे हैं, ऐसे कई आसुरिक विचारधाराएं हैं उसको हम मानते हैं। इनफैक्ट भक्ति में आने के बाद भी है ना, भक्ति में आने के बाद भी हरे कृष्ण तो जब कर रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवद्गीता सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवद्गीता की शिक्षाएं हैं उसको पूरी तरह से अंगीकार नहीं कर पा रहे। अभी भी जो आसुरिक समाज के जो विचारधाराएं हैं, असुरों की विचारधाराएं हैं, उससे प्रभावित हैं, हाँ। तो जैसे असुरों का एक प्रचार है कि सब समान है, हाँ तो कैसे सब समान है, सब अलग अलग है, सब अलग अलग स्तर पे हैं, लेकिन सब समान कह दो है तो। और फिर भक्तगण भी सोचते हैं नहीं सब समान है तो ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारी विचारधाराएं हैं, ऐसी विचारधारा है हाँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाँ प्रगति, प्रगति मतलब क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस लिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है पूरा इसका आधार क्या है, इंद्रिय भोग। लेकिन इंद्रिय भोग से तो हमें निवृत्त होना है, तो इसलिए उसके लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं चाहिए, लेकिन हम प्रभावित हैं उस विचारधारा से, तो ये समस्या है। इसलिए क्या होता है, इसलिए फिर असुरों का प्रभाव ज्यादा रहता है। तो इसलिए जब हम तो देवता कब शक्तिशाली हो सकते हैं, जब वो भगवान के उपदेश यथारूप पालन कर रहे हैं और भगवान के आदेशों पे उनको पूरा विश्वास है और पूरा उनके उपदेशों को पालन कर रहे हैं। अगर कहीं भी वो थोड़ा बहुत भी विश्वास नहीं है और उपदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर असुर जो है उन पे भारी पड़ेंगे, ऐसे भी पड़ रहे हैं। अभी असुर क्यों भारी पड़ रहे हैं, कारण यही है। श्रील प्रभुपाद असुरों के बीच में गए हाँ और उन्होंने प्रचार किया, तो हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद कभी भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उन्होंने यथारूप प्रचार किया नहीं, और जो भी आसुरी विचारधारा उसको काटा, उन्होंने बताया ये गलत है हाँ और ये सही है। तो श्रील प्रभुपाद अकेले थे है ना, अकेले थे और उन्होंने जो है पूरे विश्वास के साथ जो भगवान का आदेश है हाँ और भगवान के उपदेश का यथारूप प्रचार किया। तो एक वृद्ध व्यक्ति इतना कर सकता है, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकता है, तो अगर सारे जो भी जिनमें थोड़े बहुत दिव्य गुण बचे हैं अगर वो एकत्रित होके उस गुणों को विकसित करें और भगवान के आदेश का यथारूप पालन करें, उस पर विश्वास करें, उसके अनुसार जिएं, तो पूरा विश्व फिर से भारतवर्ष हो सकता है। पूरा विश्व पहले भारतवर्ष था जब ये परीक्षित महाराज के समय तक हाँ, तो भारतवर्ष जो हम बोलते हैं वो पूरा विश्व था, लेकिन समय के साथ साथ जो है ये संस्कृति पे आक्रमण होता गया और जो बंटवारा होता गया तो अभी हम देख रहे हैं जो भी थोड़ा अभी भारत कहते हैं हम वो भारत बचा है, लेकिन वो भी थोड़े समय पहले देखते हैं हम पाकिस्तान था और ये था, वो पूरा एक भारत, वो पूरा भारत का पार्ट था, लेकिन वो अलग हो गया हाँ। और अभी ये थोड़ा बहुत जो भारत बचा है वो भी अलग हो रहा है, तो उसका लोग सोचते हैं कि नहीं हम जो हैं जो धर्म जो था उसकी वजह से हम बैकवर्ड थे, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई क्या है, जब तक हम धर्म का पालन कर रहे थे तब तक हम सबसे आगे थे, सबसे शक्तिशाली थे। क्यों उस समय ये सब अंग्रेजी लोग भारत में आते थे, आजकल सब अमेरिका जाते हैं, कारण क्या है, क्योंकि हम सोचते हैं अमेरिका ज़्यादा शक्तिशाली है, लेकिन उस समय सब भारत आते थे, क्यों, क्योंकि उस समय भारत में सारे एक्चुअल जो शक्ति है वो क्या है, धर्म हाँ। वो है ना एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है, धर्म रक्षिता रक्षति, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो जब तक भारत के लोग हाँ धर्म का पालन कर रहे थे तब तक जो है धर्म रक्षा कर रहा था, लेकिन जब धर्म का पालन करना छोड़ा तब से पतन चालू हो गया। तो इसलिए अगर तो ये मतलब एक पॉइंट में बोल रहा हूं कि प्रभुपाद अकेले इतना कर सकते हैं, भगवान के ऊपर पूरा विश्वास करके एक व्यक्ति इतना कर सकता है, तो फिर सब। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि हर एक भारतवासी को जिसने भारत भूमि जन्म लिया है तो जन्म सार्थक करी कर परोपकार, खुद का जीवन सार्थक करना है और परोपकार करना है, जैसा प्रभुपाद ने किया। तो परोपकार कैसे, ये जो ज्ञान है ये शिक्षा जो है वो पूरे विश्व में इसका प्रचार करना है, तब हम एक जो है ना क्या एक एक एकजुट जो समाज है वो देख सकते हैं, पूरा विश्व एक हो सकता है। और ये नहीं है ज्ञान तो क्या होगा, एक जो भी थोड़ा सा भारत बचा है उसमें भी बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं उसको अलग करने के, नहीं हर एक स्टेट में आंदोलन चल रहे हैं कि स्टेट का विभाजन कर दो, विभाजन चल रहा है। वो कारण क्या है, क्योंकि अभी धर्म की शिक्षा नहीं है, धर्म का पालन नहीं करना, सब इंद्रिय भोग और वो आसुरिक विचारधारा जो है उससे सब प्रभावित है। तो हमें खुद से प्रारंभ करना होगा है ना, खुद हम इन शिक्षाओं का पालन करें, इस पर विश्वास करें, इसके अनुसार जिए, और फिर तब फिर हम इसका प्रचार कर पाएंगे, और प्रचार जितनों को हम कर पाएंगे तो उससे फिर दूसरों का जीवन परिवर्तित होगा। फिर ऐसे धीरे धीरे देवीय लोगों की संख्या बढ़ेगी तो फिर से जो है देवीय जो प्रभाव है वो ज्यादा होगा। तो ये कुछ पॉइंट्स और
जीवात्मा जो है परमात्मा का ही अंश है।
माइक माइक सब सुन लो।
जीवात्मा जो
तो वही ना इच्छा शक्ति का दुरुपयोग। भगवान ने इच्छा शक्ति दी, जितने भी जीवात्मा है भगवान के अंश है, ठीक है, और उनका और भगवान का संबंध क्या है, सेवा और प्रेम का। तो प्रेम का अर्थ क्या है, उसको ऑप्शन देना कि तुम उनसे प्रेम कर सकते हो नहीं भी कर सकते, है ना। अगर सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा कि प्रेम करना ही है तो जबरदस्ती रहेगी ना, इसलिए बंदूक रखे कि तुम्हें करना ही है, नहीं करोगे तो बंदूक छोड़ा दो। तो भगवान ऐसा नहीं करते, भगवान ऑप्शन देते हैं, तुम प्रेम कर भी सकते हो और नहीं तो अपने अलग से इंद्रिय भोग करना है, वो ऑप्शन भी है, अब तुम्हारे ऊपर है, तुम चूज करो। तो जब हम चूज करते हैं इंद्रिय भोग तो वो क्या होता है, हमारी इच्छा शक्ति का दुरुपयोग, जो भगवान ने इच्छा शक्ति दी उसका हम दुरुपयोग करते हैं। और फिर इसलिए फिर भगवान ने पूरे जगत की व्यवस्था कर ली ताकि एक पॉइंट पे आकर समझ सके कि हमने दुरुपयोग किया, हमने गलत
निर्णय लिया। तो अभी मनुष्य जीवन एक अवसर है उसको सुधारने का, उस गलती को सुधारने का, समझ रहे हैं। तो इसलिए वो जो इच्छा शक्ति है उसका हम सदुपयोग कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। सदुपयोग करते हैं तो हम आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, भगवान की सेवा में रहते हैं, दुरुपयोग करते हैं तो तुरंत भगवान की माया शक्ति हमें पकड़ लेती है और फिर माया शक्ति फिर हमें कंट्रोल करती है, हम माया शक्ति के अंतर्गत सारे कार्य करते हैं। और माया का कार्य है हमें एक समय पे ये साक्षात्कार देना कि हम इंद्रिय भोग से सुखी नहीं हो सकते, ये व्यर्थ प्रयास है, होप अगेंस्ट होप है। हाँ, और जब ये ऐसा साक्षात्कार होता है तो भगवान तैयार बैठे हैं, परमात्मा को कब मेरी तरफ मुड़ेगा ये, है ना।
हरे कृष्ण, श्रीमद् भगवद्गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।